सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन आस्तिक अभी भी घर नहीं गया था। उसे कोई ज़रूरी काम नहीं था, वो बस अरुणिमा से कुछ समय बचाना चाहता था। वो अरुणिमा का सामना नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि लावण्या की माँ ने जो भी आस्तिक की माँ के बारे में कहा है, उसके बाद आस्तिक का खुद पर काबू करना कितना मुश्किल हो गया है। और ऐसे में अगर उसका गुस्सा उसके काबू से बाहर हो जाता तो इसका परिणाम अरुणिमा को भुगतना पड़ता, और वो अरुणिमा को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। इसलिए अरुणिमा को घर छोड़कर वो तुरंत वहां से निकल गया। वहां से वो सीधे क्लब में जाता है, जहां बैठकर उसने ड्रिंक की थी। लेकिन उसके बाद उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। वो एक एक करके सारी चीज़ों को ख़त्म करना चाहता था, क्योंकि उसके पास अरुणिमा के साथ एक अच्छा भविष्य था। वो नहीं चाहता था कि ऐसी तकलीफ़ें उसे और अरुणिमा को आगे भविष्य में और ज़्यादा परेशान करें, और इसके लिए उसे किस चीज़ से निपटना था ये भी पता था। अपनी आखिरी ड्रिंक को ख़त्म करते हुए उसने नीरज को कॉल किया, और नीरज को किसी चीज़ के लिए उसने इन्फॉर्म किया। शाम होते होते नीरज उसे क्लब के बाहर गाड़ी लेकर आ जाता है और एक फाइल आस्तिक की तरफ बढ़ाता है। साथ में वो आस्तिक का एक बिजनेस कोट भी लेकर आया था। आस्तिक ने अपना पुराना कोट उतारकर डस्टबिन में फेंक दिया और अपना बिजनेस कोट पहनकर वो गाड़ी में बैठ जाता है। नीरज खुद ड्राइवर बनकर गाड़ी ड्राइव की, और वो गाड़ी को वहां ले जा रहा था जहां पर आस्तिक ने उसे ले जाने के लिए कहा था। करीब आधे घंटे बाद आस्तिक अभी भी अरुणिमा के बारे में सोच रहा था, लेकिन जब नीरज ने उससे ये कहा कि वो लोकेशन पर पहुंच गए हैं, तब जाकर आस्तिक ने बाहर की तरफ देखा। एक 15 मंजिला बिल्डिंग को देखकर उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने मुस्कुराते हुए बिल्डिंग को देखा और फिर नीरज को देखकर उसने कहा, मैं अभी अंदर जा रहा हूँ, लेकिन 15 मिनट बाद तुम वो एनवेलप लेकर अंदर आ जाना, समझ गए? नीरज ने हाँ में सिर हिलाया। आस्तिक गाड़ी से बाहर निकलता है और बहुत स्टाइल से लिफ्ट की तरफ बढ़ जाता है। उसने 15वें फ्लोर का बटन दबाया और करीब 5-7 मिनट में लिफ्ट 15वें फ्लोर पर थी। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, ऑफिस में बैठे लोग लिफ्ट की तरफ देख रहे थे, लेकिन जब आस्तिक वहां से बाहर निकला तो वहां पर खड़े लोगों की आँखें एकदम बड़ी हो गईं। कुछ ने तो आस्तिक को पहचान भी लिया, और उन्होंने सम्मान से आस्तिक के सामने अपना सिर भी झुकाना शुरू कर दिया था, और हल्के से झुकते हुए उन्होंने आस्तिक को हेलो कहना शुरू किया था। आस्तिक ने मुस्कुराते हुए सबको देखा, लेकिन उसकी नज़र सामने थी, जहां लिखा था CEO सूर्य मल्होत्रा। जैसा कि आस्तिक ने इमेजिन किया था, सूर्य अपने सामने आस्तिक को देखकर एकदम से घबरा जाता है। वो चौंक गया था और झटके से अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है। कमरे में AC फुल था, लेकिन सूर्य को पसीने आ गए। उसने अपनी सांस को संभालते हुए अपनी टाई को थोड़ा ढीला किया। आस्तिक अपनी खतरनाक मुस्कान के साथ सूर्य को देख रहा था, लेकिन सूर्य भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। भले ही वो आस्तिक से उम्र में छोटा था, लेकिन फिर भी वो इस खेल को अच्छी तरह से खेलने जानता था। अपनी घबराहट को छुपाते हुए उसने मुस्कुराकर आस्तिक को देखा और टेबल के दूसरी तरफ से आस्तिक की तरफ आने को हो रहा था, लेकिन आस्तिक भी समझ रहा था कि सूर्य के साथ खेल भारी पड़ सकता है। आस्तिक का तो मन कर रहा था कि अभी इसी वक्त अरुणिमा की किडनैपिंग के लिए वो सूर्य की जान ले ले, और ऐसा वो करेगा भी, लेकिन अभी सही समय नहीं आया है। आस्तिक उनमें से नहीं है जो अपने पत्ते अपने दुश्मन के सामने रखकर सारा खेल ही खत्म कर दे। वो तो उनमें से है जो एक एक पत्ता दुश्मन के सामने कायदे से फेंकता है और खेल को और ज्यादा खतरनाक और इंटरेस्टिंग बनाता है। सूर्य भले ही आस्तिक से उम्र में कुछ साल छोटा है, लेकिन वो आस्तिक की तरह ही पर्सनैलिटी वाइज काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, और उसकी बॉडी स्ट्रक्चर आस्तिक से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है। सूर्य आस्तिक के पास आता है और अपना हाथ आगे करते हुए कहता है, हेलो मिस्टर रायचंद, आई एम सॉरी आपको अचानक से अपने ऑफिस में देख कर, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मुझे कैसे रिएक्ट करना है, इसलिए मैं थोड़ा घबरा गया। आस्तिक ने एक आईब्रो उठाई, मिलना तो मुझे भी तुमसे था, लेकिन उम्मीद नहीं की थी कि मुलाकात इस तरीके से होगी। आस्तिक ने एक सार्कास्टिक तरीके से सूर्य से बात की, लेकिन उसने सूर्य के साथ हाथ नहीं मिलाया। सूर्य ने अपना हाथ पीछे कर लिया, लेकिन उसके चेहरे पर भी गुस्से के भाव थे, पर वो उसे छुपाते हुए आस्तिक को मुस्कुराकर देखता है और कहता है, तो मिस्टर रायचंद यहाँ कैसे आना हुआ? मतलब मैंने कई बार कोशिश की आपसे मिलने की, लेकिन कभी हमारा आमना सामना नहीं हुआ, पर आज आप सामने से मेरे ऑफिस में आए हैं, ज़रूर कोई ख़ास बात? आस्तिक ने एक फीकी मुस्कान के साथ हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ बात तो है, लेकिन सोच रहा हूँ वो बात तुमसे करनी चाहिए या नहीं। वो क्या है ना, तुम्हारी कंपनी कई बार मेरी कंपनी को बिजनेस प्रपोजल भेज चुकी है, इसलिए सोच रहा हूँ कि क्यों ना तुम्हारी कंपनी के साथ एक डील की जाए। सूर्य के चेहरे पर एक अजीब से एक्सप्रेशन आ गए और उसने घूरते हुए आस्तिक को देखकर कहा, डील? और वो भी मेरी कंपनी के साथ? क्यों, इंटरेस्ट नहीं हो क्या? आस्तिक ने पूछा तो सूर्य जल्दी से अपने आप को संभालते हुए बोला, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आपके साथ कौन नहीं काम करना चाहेगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपके साथ किसी भी बिजनेस पार्टनरशिप में ज्वाइन होने से पहले मुझे मेरे फादर से पूछना होगा, मैं उनसे पूछे बिना कोई काम नहीं करता हूँ। आस्तिक को इस बात पर काफी तेज हंसी आ रही थी, लेकिन उसने अपनी हंसी अपने अंदर ही रोक ली और अपने चेहरे पर एक अजीब सा लेकिन खतरनाक एक्सप्रेशन बनाते हुए कहा, अच्छा तो तुम अपने पापा से पूछे बिना कोई काम नहीं करते हो। वैसे मानना पड़ेगा उम्र में बड़े हो गए हो, लेकिन अभी भी तुम छोटे बच्चे हो जो हर काम अपने पिता से पूछकर ही करते हो। वो क्या कहते हैं उसे, हाँ बाप का दुलारा। आस्तिक के ऐसे टॉन्ट मारने पर सूर्य के हाथों की मुट्ठियां कट गई थीं, लेकिन उसने अपने चेहरे पर जितना हो सके उतना सामान्य भाव रखा और मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है मिस्टर रायचंद, ये कंपनी और ये कारोबार सब मेरे पापा का ही खड़ा किया हुआ है, मैं तो बस इसे संभाल रहा हूँ, इसीलिए उनसे पूछे बिना मैं कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता हूँ, और इस वक्त वो किसी जरूरी काम के लिए इंडिया से बाहर गए हैं, तो जब तक वो वापस नहीं आ जाते हैं तब तक मैं आपको इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। आस्तिक ने अपने हाथ हवा में उठाए और एक गिव अप वाला साइन देते हुए कहा, ऐसी बात है तो ठीक है, अगर तुम इंटरेस्टेड नहीं हो तो मैं इस डील के लिए किसी और कंपनी को तलाश कर लेता हूँ। आस्तिक वहां से जाने ही वाला था कि सूर्य ने उसे रोकते हुए कहा, मिस्टर रायचंद प्लीज, अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो एक कप कॉफी पीकर जाइए। वैसे भी मैंने ये तो नहीं कहा है ना कि मैं आपके साथ बिजनेस करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बेशक मुझे आपके साथ बिजनेस करना है, आप बैठिए इस बारे में बात कर सकते हैं। आस्तिक मुड़ा ही था, उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई और उसने चेहरा घुमाकर सूर्य को देखते हुए कहा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, चलो तुमने कोई डिसीजन खुद से तो लिया। ऐसा कहते हुए आस्तिक वहां लगे बड़े से सोफे पर बैठ जाता है और सूर्य भी उसके सामने बैठ जाता है। तभी उनके डोर पर नॉक होता है। सूर्य ने कम इन कहा तो सूर्य की सेक्रेटरी अंदर आती है और वो सूर्य को देखते हुए बोली, सर मिस्टर रायचंद का एक आदमी बाहर खड़ा है और वो अपने साथ एनवेलप लेकर आया है, क्या मैं उसे अंदर भेज दूं?
ठीक है तुम उसे अंदर भेजो, सूर्य ने ये कहा, लेकिन उसके तुरंत बाद सूर्य की असिस्टेंट की नज़र आस्तिक पर जाती है और आस्तिक को देखकर वो एकदम से आस्तिक को देखती रह जाती है। आस्तिक के शर्ट के दो बटन खुले हुए थे और उसकी चेस्ट हल्की रिवील हो रही थी। ये देखकर उस लड़की का गला सूखने लगा और उसके होंठ अपने आप गीले होने लगे। उसने अपने निचले होंठों को दांतों से काटना शुरू कर दिया और आस्तिक ने ये नज़ारा अपनी आंखों से बहुत अच्छी तरह से नोट किया था, यहां तक उसने अपनी तिरछी निगाहों से उस लड़की को देखा भी। रश्मि, रश्मि, सूर्य के दो बार जोर से नाम लेने के बाद सूर्य की असिस्टेंट रश्मि होश में आती है और सूर्य को देखते हुए बोली, जी सर। तो सूर्य ने गुस्से में उसे देखा क्योंकि उसने भी देख लिया था कि वो किस इंटेंस भरी नज़रों से आस्तिक को देख रही थी। उसने गुस्से में कहा, जाओ यहां से और मिस्टर रायचंद के आदमी को अंदर भेजो और उनके लिए कॉफ़ी भी भेजो। रश्मि ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया और उसके बाद एक नज़र वो आस्तिक को देखकर वहां से चली जाती है। आस्तिक ने सूर्य की तरफ देखा तो सूर्य ने कहा, आई एम सॉरी मिस्टर रायचंद, मेरी असिस्टेंट ने पहली बार ऐसा रिएक्ट किया है। लेकिन आस्तिक मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं, ये इतनी बड़ी बात नहीं थी, मुझे आदत है, लड़कियां अक्सर मेरे चाम को देखकर आहें भरने लगती हैं। तभी केबिन पर नॉक होता है। सूर्य अंदर आने के लिए कहता है तो नीरज अपने हाथों में एक एनवेलप लेकर अंदर दाखिल होता है। वो सूर्य को हेलो कहता है और आस्तिक से कहता है, सर ये एनवेलप। एनवेलप सूर्य की तरफ बढ़ाने के लिए कहा और सूर्य से कहा, मिस्टर मल्होत्रा ये हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है, अब हम बिजनेस पार्टनर बनने वाले हैं तो इतना तो बनता ही है ना। सूर्य अपनी हल्की सी मुस्कान के साथ उस एनवेलप को अपने हाथ में लेते हुए कहा, मिस्टर रायचंद इसकी क्या जरूरत थी। लेकिन आस्तिक ने भी फॉर्मैलिटी के रूप में कहा, ये बस एक छोटा सा तोहफा है आने वाले काम को अंजाम देने के लिए, मैं चाहता हूं आप इसे खोल कर देखें। सूर्य ने एक स्माइल की और उसके बाद उसने उस एनवेलप को खोला और जैसे ही उसने उस एनवेलप को बाहर निकाला वो एकदम से खड़ा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, व्हाट द